ओम शांति। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय जी और अनुभवी बहन हंसा बहन मौजूद हैं। हम सब एक हाथ से स्वागत करेंगे। आज का हमारा पैनल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दादियों के साथ के अनुभव। भ्राता मृत्युंजय जी से आप सभी परिचित होंगे, सभी भाई बहन जानते हैं ना। आप पिछले 52 वर्षों से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, देश विदेश में बेहद की सेवाओं के निमित्त हैं। शिक्षा प्रभाग के माध्यम से विश्व भर में मूल्यों का आपने आगाज किया है और हेडक्वार्टर में ही आप समर्पित हैं। बड़े वरिष्ठ भाइयों दादियों सबसे आपने पालना ली, आप अनुभवों के भंडार हैं। और हमारी हंसा बहन 1986 में सेंटर पे रहना शुरू किया लंदन में, 91 में दादी जी के साथ देश विदेश की यात्रा करनी शुरू की और 2007 में जब दादी जी मधुबन में रहने लगे तो हंसा बहन ने उनके अंग संग रह करके दादी जी के साथ देश विदेश में बेहद की सेवाएं की। दादी जी की भी बहुत सेवा की, उनके पास भी दादी जी के साथ के अनुभवों के इतने भंडार हैं। हम सुनना चाहें तो भले शाम हो जाए लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम जितना इनसे ले सकते हैं उतना लेंगे। तो पहला प्रश्न आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से है। भ्राता जी, आप दादी प्रकाशमणि जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनके साथ में आपने क्या सीखा देखा वो सब बातें हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
ओम शांति। सर्वप्रथम सभी दादियों का अनुभव का शेयर करने के ये सुअवसर आप सबके साथ में मिला, इसके लिए बहन को आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए खुशी की बात है। सर्वप्रथम हमारा दादी हृदय पुष्पा की बात में कहना चाहता हूँ, उसके बाद में शी मे नॉट बी सो मच नोन हियर, माना वो तो है यज्ञ के लिए परंतु दूसरे लोगों को नया जनरेशन को मालूम नहीं। बाबा कहते दृष्टि से सृष्टि, माना आपकी नजर से कोई भी गुजरे उनके अंदर जीवन में परिवर्तन आ सके और उनके अंदर चेंज परिवर्तन व अनुभव करे स्पिरिचुअलिटी का शांति का। यदि ये बाबा का महावाक्य हम विश्वास करते हैं इसका प्रूफ मैं खुद हूं, क्योंकि 1968 में मैं ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से लगभग सितंबर मास में हम कनेक्शन में आया, अक्टूबर में माउंट आबू आया, उसके बाद में हिस्ट्री अलग है। उन दिनों में एक छोटा सा सेंटर था बेंगलोर में कुमारा पार्क एक्सटेंशन में, फर्स्ट फ्लोर में एक बिल्डिंग था छोटा सा, एक छोटा हॉल, एक बेडरूम और सिटिंग रूम। और उस समय मेरे मित्र के साथ हम डेली बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे इवनिंग। हमने रोज हमारा कॉलेज जाने के टाइम है उसी रास्ते में था ये बिल्डिंग वाइस सेंटर, उसमें लिखा होता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुझे रोज एक प्रश्न उठता था, विश्वविद्यालय अधिकांश से दो शब्द का है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एंड सो फॉर, परंतु इसका नाम पढ़ने में ही इतना स्वास्थ्य लंबा लेना पड़ता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर। मैंने बोला ये कौन सी डिग्री देते हैं व कौन सी पढ़ाई करते हैं इसका समझ में नहीं आता, एक छोटा सा बिल्डिंग में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है नेचुरल। और उस दिन हमने अपने मित्र था उसके साथ मैंने बोला बाद में चलेंगे खेलने के लिए, अभी थोड़ा ऊपर जाकर के देखते हैं क्या कोर्स कराता है क्या है। हम गए, उन दिनों में चेयर्स नहीं था, आजकल तो बड़ी अच्छे अच्छे चेयर्स है, सोफा है, कॉर्पेट है सब कुछ। उधर थोड़ा कारपेट था, ऐसा गद्दी, ये गद्दी में ना इधर कंफर्टेबल आई है, वो तो बिना हैंडल, जिसको गद्दी कहते, इसको गद्दी नहीं कहते, इसको तो सोफा है। उसमें हृदय पुष्पा दादी बैठ करके सबको दृष्टि दे रहे थे, हमको दृष्टि क्या मालूम नहीं है। और मैं जाकर के दीवार को पीठ दे करके ऐसे ही बैठ गया, मेरे साथी भी बैठ गए दोनों, और 15 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे, और दीदी भी नहीं बोल रहे, इधर से भी कोई नहीं बोल रहे, उधर से भी कोई नहीं बोल रहे, मैं तो आपको हरेक को ऐसा ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा देख रहा हूँ। और दादी ने भी सबको देख करके मेरे तरफ भी देखा, और मैं वो देखते ही मेरे के अंदर उसका चेहरे पर एक तो लाल लाल चेहरा और बहुत अच्छे अट्रैक्टिव, और प्लस इतनी साइलेंस का, बाबा कहते हैं आपका दृष्टि से लेजर बीम, लेजर लाइट की तरह दूसरों को ताकत मिलता है, बाबा का ये महावाक्य। परंतु उन दिनों में मैं बाबा का जानता नहीं था, और वो मेरे को दृष्टि दिया करीब दो तीन एक दो मिनट ही है, मेरे को अंदर ही अंदर कुछ अच्छा वाइब्रेशन कहो, अनुभव कहो, फीलिंग कहो, अनुभव हुआ। मैंने बोला इधर कुछ शक्ति होगा, कोई पावर है इधर, ऐसा अंदर ही अंदर फील किया। बाद में योग हो गया, लोग तो सभी व्हाइट लाइट ऑन कर दिया, और दादी ने कुछ क्लास शुरू किया। मेरे को तो हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, है? और दादी को इंग्लिश नहीं आता, कन्नड़ा नहीं आता, और उनकी भाषा मौन की भाषा, स्नेह की भाषा, प्रेम की भाषा, नयनों की भाषा, ये सभी भाषा तो बाद में हम लोग भी सीख लिया, परंतु उस समय में उनको मालूम नहीं था ये क्या चीज है। और बाद में एक दूसरी भाई है, उसका अभी गुजर गए, मरियप्पा भाई नाम से, वो जनरल मैनेजर था HMT में, वो रेगुलर स्टूडेंट थे परिवार के साथ। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए, ये सभी इंट्रोडक्शन दी हम दोनों आपस में, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अब तो रोज एक बोर्ड देखता हूँ, और आज क्यूरियोसिटी भी मैं अंदर जाकर के देखू। और अच्छा आपने 7 दिन का कोर्स करेंगे, इसकी पूरा आपको बताएंगे। मतलब 4-7 दिन में क्या कोर्स कराएंगे, हमने आपको पता पड़ जाएगा 4-7 दिन में आपको क्या क्या। मैंने बोला मेरे मित्र से पूछा, आज से अटेंड कर देते हैं, 1 घंटा के लिए अटेंड किया। उन्होंने आत्मा के बारे में परिचय कराया, मुझे ऐसा लगा उसी टाइम में मेरा न्यू लाइफ आ गया। उसका परिचय देते देते ही आई एक्सपीरियंस सोल कॉन्शियस, माना एक कन्फर्मेशन हो गया, आत्मा शरीर छोड़ते हैं, आत्मा पुनर्जन्म होता है, इसके लिए हम बहुत अलग अलग पूर्व जन्म भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। दैट अंडरस्टैंडिंग मुझे लगभग 1 घंटे के अंदर एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद में नेक्स्ट डे भी आया, मैंने शॉर्ट में कर तो नेक्स्ट डे आते हुए इन्होंने परमात्मा का परिचय कराया। साउथ में दुनिया के हिसाब से लिंगायत्स कहते हैं, जो लिंग पूजा करते हैं उसको लिंगायत्स कहते हैं, और वी बिलीव इन गॉड शिवा। इसके लिए परमात्मा की ज्ञान देना शुरू किया, तो मैंने बोला अपना ही नॉलेज दे रहे, अपना ही सिद्धांतों पर व विश्वास पर इन्होंने ज्ञान दे, बहुत खुशी हुई है शिव बाबा का परिचय देते देते। बाद में बहुत बातें इनमें सुना, ये तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसको तीनों लोक का एक्सप्लेन करके परमात्मा सर्वव्यापी, परमधाम से परमात्मा आते हैं। मैं तो थोड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर ही अंदर, वो कैसे हो सकते हैं, हम तो परमात्मा तो सर्वव्यापी मानते हैं, सभी जगह में परमात्मा, ये लोग परमधाम से आते हैं। फिर भी मेरे को थोड़ा लॉजिकली अच्छा लगा, और भी इससे कनेक्टेड बातें हैं, परमात्मा ब्रह्म विष्णु शंकर को रचयिता है, वो भी बातें हैं, तीनों लोगों का मालिक है। उसके बाद में इन्होंने शंकर शिव का, हम सभी विश्वास करते हैं साउथ में भी, विशेष शंकर को ही शिव, शिव को ही शंकर कहते वास्तव, वो बताए तो मेरे को तो अंदर रंग खोल रहे, शंकर इसका मतलब महादेव, वो शिव नहीं है, शिव अलग है, शंकर अलग है। और इसके काफी अच्छे बातें चर्चा हुई, और मेरा भी अनेक डाउट था वो पूछा, वो वेरी कन्विंसिंग था, वेरी लॉजिक था, वेरी साइंटिफिक था, हाँ ये सही है, शंकर शिव नहीं है, शिव शंकर नहीं है, इसके लिए वो क्या बोलते हैं तपस्या कर रहा है शंकर उनको प्राप्त करने, ये सारी बातें अनुभव हुआ। तीसरे दिन भी गया, उन्होंने योग के बारे में कुछ बताया, इतना अच्छा मेरा अपील नहीं हुआ उस समय, परंतु एक बात का अच्छा लगा, आप वो ज्योत ऐसे ही है ना शिव बाबा के पीछे जो इधर होगा, वो रेड लाइट इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा शिव बाबा का कैस्केट लगाते, आप इसको देखो, अपने आप को परमात्मा के संतान समझो, आत्मा समझो, ये बातें जो कमेंट्री करते हैं ऐसे करके, मैं 10 मिनट लगभग ऐसे ही देखते हुए बैठा था। मेरे को ऐसे लग रहा था मैं किसी से टेलीफोन द्वारा बात कर रहा हूँ, किसी को अननोन व्यक्ति से वह टेलीफोन द्वारा बात कर, मेरे अपने अपने मन की बातें, अच्छा एक्सपीरियंस। तब मैंने उन दिनों में आंख बंद करके करते थे, और दूसरे लोग तो नहीं करता था, हम तो उस टाइम खुले आंख से कैसे करना वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, और क्योंकि पूजा करने के टाइम ही मैं ऐसे रख करके शिवलिंग को पूजा करते थे, और मुझे कुछ अंदर ही अंदर वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ, पीस का एक्सपीरियंस हुआ। बाद में मैंने सोचा इधर कुछ विशेष अनुभव हो रहा है, शक्ति है। दैट इज हाउ आई हैज इंट्रोड्यूस, और ये नॉलेज बहुत है, इसके बारे में डिटेल कोर्स किया। उसी दिन से आज दिन तक तो मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, गार्डली स्टूडेंट बहुत। उसके बाद में शाम के टाइम के बजाय सुबह सुबह अमृत वेला जो है 5 बजे उधर क्लास होता था, मुरली क्लास। मुरली क्लास का मुझे इतना फर्स्ट टाइम गया एक दो दिन में, और वो दादी हिंदी में मुरली पढ़ती थी, दूसरे लोग कोई सभी बैठ के सुनने वाले थे नीचे पट पर बैठ करके। मैं 10-15 मिनट बैठता था, उठ के चले जाता था, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता है, और क्या बता रहे हो तो समझ में नहीं आता है, और हिंदी जा करके। फिर भी मैं कभी कभी शाम को कॉलेज से वापस आने के टाइम में मैं सेंटर पर जाता था, ऐसे ही जाता तो दादी बिठा करके ऐसे बगल में बिठा करके, क्यों आप चले जाते हो सुबह, बाबा का मुरली नहीं सुनते हो, बाबा का शिक्षा सुनते नहीं, आप जल्दी चले जाते हैं। मैंने बोला दादी मुझे मुरली हिंदी आप पढ़ते हो, हिंदी मुझे नहीं आता है, इसके लिए मैंने टाइम पास क्यों करो इधर, मैं चले जाता हूँ, योग में जाकर के बैठता था थोड़ा टाइम ऐसी। बाद में उन्होंने एक भगवत गीता किताब, रियल गीता किताब मुझे इंग्लिश में जगदीश जी ने लिखा हुआ, ऑल इन फर्स्ट पर्सन, बाबा का वो महावाक्य है, वो दिया। मैं उस किताब ले जाकर के घर में पढ़ना शुरू किया, माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर लॉन्ग लास्ट चिल्ड्रन, माय डियर प्रोजेनी, आप बहुत बातें अच्छी अच्छी बातें। मैं उसको पढ़ते पढ़ते तो मेरे आंखों में आंसू आने लगा, मैंने बोला मेरे लौकिक भाई बड़ा भाई था, मैं कभी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ गीता पढ़ रहा हूँ, अंदर ही अंदर आंसू आ रहा है, वो देख करके तेरे को क्या हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो। मैंने वो भी उसको देखने के लिए दिया, ये मेरे लिए बहुत, क्योंकि उस समय में मेरे को और भी रियलाइजेशन हुआ उसमें, और रियलाइजेशन के बाद में ये भगवान का ही महावाक्य हो सकता है, दूसरे किसी का नहीं, माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर लॉन्ग लास्ट चिल्ड्रन, और भी बहुत लंबे बातें, और ये सभी बातें रियलाइजेशन बहुत जल्दी से जल्द 7 दिन के अंदर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और सुबह क्लास में भी आने का अनुभव हुआ। उसके एक मास के बाद में तुरंत मैं माउंट आबू में 8-10 भाई बहने सभी आने वाले थे, मुझे भी चलना हो तो चलो, और उस समय में मेरे तो अंदर चलने के लिए इच्छा हुई, क्योंकि परमात्मा का ये महावाक्य उधर डायरेक्ट सुनेंगे, ब्रह्मा बाबा के आदि उसमें लंबे हिस्ट्री है, उन्होंने वो भी बताया कल्प वृक्ष में ब्रह्मा बाबा के ऊपर खड़ा है, नीचे तपस्या बैठा, और ब्रह्मा बाबा को देखते मुझे अपना ग्रैंड फादर का याद आता था, ये तो वो भी लंबे है, और वो भी उसका भी मूछ था, वो भी टर्बन पहनते थे, ब्रह्मा बाबा टर्बन नहीं होता था, इसके लिए मैंने बोला इसको, उन्होंने परिचय कराने के बाद में शिव बाबा इनकी तन में प्रवेश करते हैं और शिक्षा देते हैं बाबा का, मुझे उसमें थोड़ा विश्वास कम हुआ, क्यों ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो इमीडिएटली ऐसा लगता है मेरा ग्रैंड फादर है ब्रह्मा, फिर भी इसको ब्रह्मा कहते कैसे हो सकता है, और हम तो शिव बाबा का हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े संत महात्मा है, इतने बड़े घमंड जगत गुरु टाइटल वगैरह होते हैं, उनको छोड़ करके एक साधारण आत्मा साधारण तन में इसमें कैसे हो सकता है। फिर भी मैं चलो शिव बाबा तो है, शिव बाबा की नॉलेज है, हम बाबा शब्द यूज नहीं करते थे उधर, साउथ में बाबा का शब्द इतना चिरपरिचित नहीं है, स्वामी जी कहना, गुरु जी कहना, महात्मा कहना अलग बात, बाबा शब्द बड़े साई बाबा का तो था, परंतु साई बाबा का इतना उस समय प्रसिद्ध नहीं था, वो आजकल तो ज्यादा परिचित है, आजकल तो चले भी गए, और उसके बाद में फिर भी बाबा का महावाक्य, शिव बाबा का महावाक्य सुनने को थोड़ा इन्होंने एक ड्यूटी दिया मुझे, हम उस समय बीकॉम फाइनल ईयर पढ़ रहा था, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग भी सीख रहा था, और उस टाइम एक मरियापा भाई ने और दूसरे एक माथा थे, उन्होंने एक टास्क दिया, वो हिंदी टू कन्नड़ा ट्रांसलेट करके आप कन्नड़ा इसको टाइप करके दो, मुरली साइक्लो स्टाइल होता था, साइक्लो स्टाइल करके आप देना। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, हम वो साइक्लो स्टाइल करने से पहले उसको हिंदी कन्नड़ा टाइप करना होता था, मैं कन्नड़ा टाइप करने का पहले सीखा था, उसको पढ़ते 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 मुझे मुरली का इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि एक दो बार उसको करेक्शन लगाना पड़ता है, टाइप करने के बाद में देखना पड़ता है, और ऐसा उसका मुरली का वैल्यू जो है, मैं जैसे हमारा राजू मुरली टाइप करते 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 आज कहाँ तक पहुंच गया, मुझे भी प्रारंभ में मुरली का टाइप करते हुए मुझे अच्छा रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद की बात है जब माउंट आबू आए और मैंने बाबा को आंगन में, पांडव भवन आंगन में, अभी तो वो क्या बोलते हैं सीमेंटेड है, उन दिनों में मट्टी के आंगन था, आंगन हिस्ट्री हॉल था, ट्रेनिंग हॉल में थोड़ा आधा आधा कंस्ट्रक्शन था, और मेडिटेशन हॉल नहीं था, और अब आजकल बुकिंग जो है ना, बुकिंग एरिया, उधर भी एक छोटा सा डाइनिंग हॉल था, जो स्टोर है ट्रॉली आजकल तो रखा है ना ट्रॉली, उधर तो किचन था, और दोनों छोटा सा किचन उन दिनों में, परंतु मैं आते हुए बाबा ने अपनी हॉल से दूसरी जो कमरा है उधर जा रहा था, मैंने देखा, मेरे को ऐसा लगा यही बाबा है, उसकी देखते ही ऐसे इतने मेरे को अंदर खुशी हुई, मैं जाकर के बाकी पहन लू बाबा को ऐसा, परंतु मेरे साथ जो कुछ भाई लोग थे, नहीं 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 आप स्नान नहीं किया, इसलिए आप जाकर के स्नान करो, बाबा शाम को मिलेंगे, और छोड़ो थोड़ा है, उस टाइम में मेरे को अच्छा नहीं लगा मेरे को, परंतु फिर भी ये सही है, ट्रेन में जर्नी करके दो दिन अढ़ाई दिन करके आया, स्नान नहीं किया, और कुछ खाना तो मिल जाता था, खाना ट्रेन में लेके आता, ऐसे ही बाबा का फर्स्ट एनकाउंटर कहो, फर्स्ट मीटिंग कहो, फर्स्ट दर्शन कहो, फर्स्ट एक बाबा का फीलिंग जो है मैंने देखा। उसके बाद में शाम को तब तैयार होकर के बाद में मिले, और बाबा से मैंने भी जा करके हक किया, ऐसा हक किया तो मैंने जिंदगी में किसी के साथ ऐसा अनुभव नहीं किया था, जैसे कॉटन का, अब कॉटन को प्रेस करे तो कैसे होगा, इतना सूक्ष्म का अनुभव, और मुझे अपने आप को भूल गए, मैं आत्मा शरीर क्या, हमने एक दूसरा लोक में है, दूसरी सिचुएशन में है, ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस किया, तब मेरे को अनुभव ये सचमुच बाबा है, सचमुच बाप है सचमुच, और इतना प्यार का अनुभूति, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अनुभूति, और डीप डेड साइलेंस कहो, इसका अनुभव मैंने उस टाइम में किया। उसके बाद में लगभग एक हफ्ता में उधर ही रहे, उसका अलग अलग अनुभव है, मुरली मेरे बगल में दूसरा भाई मरियापा भी आया था, उसको ट्रांसलेशन करके हिंदी टू कन्नड़ा में व कभी इंग्लिश में सुनाता था। उसके बाद में मुझे 100% कन्फर्मेशन होगा, ये हमारा बाप है, ये मैं परमात्मा से मिला हूँ, ये मधुबन का वाइब्रेशन और अन्य बातों का एक्सपीरियंस मैंने उसी टाइम में किया। अभी नेक्स्ट बाद में करेंगे दादी प्रकाशमणि जी, तब तक बहन जी कुछ सुने।
भाई साहब ने हम सबको जैसे कि साकार बाबा दिखा दिया, ऐसा ही अनुभव हुआ ना, आपके दिव्य अनुभव से हम भी उस दिव्य लोक में पहुंच गए। अभी हमारी आदरणीय हंसा बहन जी से सवाल है कि साकार बाबा के जाने के बाद क्या दादी जानकी जी के मन में कोई सवाल था, और अगर सवाल था तो बाबा ने उसको कैसे हल किया, और अब दादी जी के जाने के बाद क्या आपके मन में भी कोई सवाल था, और अगर था तो बाबा ने उसको कैसे हल किया।
ओम शांति। हम जब लंदन में थे तो दादी के मुख से बहुत सारी उनकी साकार बाबा के साथ की कहानियाँ बहुत सुनी है, और कई बारी क्लासेस में भी सुनाती थी। तो जब साकार बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके पहले ही दादी क्या है कि दादी छोटेपन से ही काफी बीमार रहती थी, तो ज्ञान में आई तब भी उसकी तबीयत हमेशा ऊपर नीचे रहती थी। तो बाबा के अव्यक्त होने के पहले ही दादी ट्रैवलिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि कहाँ ट्रेन में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो दादी की तबीयत काफी नाजुक थी। तो अंदर ही अंदर वो सोचती थी, तो पांडव भवन में जहाँ अभी शांति स्तंभ बना है, तो उस समय उसका बहुत ख्याल चल रहा था कि अभी तो मैं सेवा पर नहीं जा पाऊंगी, तो मैं करूंगी क्या। तो उस समय फिर साकार बाबा के साथ कभी कभी पैदल करती थी, वहाँ टेनिस कोर्ट रहता था, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था। तो उसी समय साकार बाबा ने कहा कि क्योंकि इसका सवाल उठता था कि मैं करूँगी क्या, तो बाबा ने कहा कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है तो यहाँ आप बहनों का ट्रेनिंग करना, मैं है ना आपको यहाँ अपना एक छोटा सा कमरा बना के दूंगा जो अभी इंद्रप्रस्थ है ऊपर। तो इस रीति से बाबा ने उसको बहुत हल्का कर दिया था कि ये आपको करना है, बहनों की ट्रेनिंग करानी है। तो अभी जो आप बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें जो देख रही है, जो जयंती बहन है, शशि बहन है, शीलू बहन है, सरला बहन है, बहुत सारी बहनों का दादी ने वहाँ बैठ के 69, 70, 71 इसी रीति से वहाँ दादी ने बहनों का टीचर्स ट्रेनिंग किया। तो फिर बाबा जब अव्यक्त हो गए तो वही उसका फिर से संकल्प आया कि मैं करूँगी क्या। तो फिर दादी ने यही सोचा कि जो हमने इतना लिया है साकार बाबा से, तो वो हमको रिटर्न करना है, तो रिटर्न देना है। तो इस रीति से दादी का इस रीति से पाठ बना। फिर 1974 में तो फिर तो पुणे गई, पुणे के बाद फिर पुणे से लंदन गई। तो दादी का विदेश का पाठ 1974 से शुरू हुआ, जो कभी उसके संकल्प में भी ना, कभी उसके ख्याल में ना, कभी उसके संकल्प में। तो 1974 में दादी विदेश गई। तो हम भी अभी क्या है कि हम सब समझते हैं कि दादी की उम्र ऐसी थी, दादी की तबीयत भी ऐसी थी, ये सब जानते हुए भी फिर भी हमको लगता है कि दादी और लंबा खींच सकती थी। क्योंकि दादी जब स्टर्लिंग में थी, और स्टर्लिंग में तो तबीयत बहुत ही खराब थी, मृत्युंजय भाई ने भी आके देखा था दादी की तबीयत, उस समय आईसीयू में थी, तो काफी दादी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। और उस समय दादी शरीर छोड़ती थी तो ऐसे लगता था चलो बहुत खराब थी, और इस रीति से दादी ने शरीर छोड़ा। लेकिन हम जिस समय उसको आबू लेके आए, वो एक सप्ते में जो दादी का इम्प्रूवमेंट होता गया, जैसे कि सब वायर्स उतर गए, सब ऑक्सीजन उतर गया, तो उस समय लगता था कि दादी तो अच्छी हो रही है, खाना भी खा रही है। तो वो सब देखते हुए फिर सडनली एक रात के अंदर ऐसे हो गया, तो वो जैसे शॉक था। तो ये सबसे बड़े से बड़ा पेपर मेरे आगे उस समय आया कि ये क्या हो गया। हम सब तबियत का ज्ञान सब है, तबियत के बारे में सब पता है, उम्र के भी, लेकिन ये जो सडनली जो हो गया, वो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि अचानक का पाठ भी ऐसे आएगा, तो हम आगे से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इस रीति से जैसे हमारे में इतना योग बल हम भरेंगे तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में हम फेस कर सकते हैं। तो हमारे सबसे बड़ा ये पेपर आया, फिर दूसरा पेपर ये आया जो दादी हमेशा हमसे हमारी उन्नति का बहुत सोचती थी, और कई बारी हमको बोला ये जो स्टेज फियर होता है ना कि नहीं बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इस रीति से ये वाचा सेवा का जो पेपर आया वो बहुत जैसे कठिन सबसे पेपर, क्योंकि दादी के जाने के बाद आप समझ सकते हो कि सारा देश विदेश फोन करता है और यही जानना चाहता है कि आपका अनुभव दादी के साथ शेयर करो। तो चार मास हमने ऐसे ही टाला क्योंकि नहीं सुना पा रही थी, एक तो ऐसे अभ्यास भी नहीं था और दूसरा इमोशनल भी आ जाता था, तो इस रीति से ये सेकंड पेपर बहुत कठिन था हमारे आगे। तो ये दोनों पेपर हमको फेस अभी भी करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा भी थोड़ा ठीक हो रहा है तो कोई भी बहन फोन करती है तो हम करते भी है, और 10 हमने अभी सोचा था कि 10 मिनट का दादी का किसी ने ही ये सजेशन दिया कि आप 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ दादी का ऐसा अनुभव सुनाओ जो सारा वर्ल्ड में ये दादी का अनुभव का चला जाए, क्योंकि कहीं नए हैं, कोई ऐसे भी भाई बहन है जो दादी को नहीं भी जानते थे, जो अभी जो नए नए आए हैं, और खास करके दादी इतने साल लंदन में रही तो इतना कोई दादी का परिचित नहीं था, अगर बुक्स नहीं पढ़ी होती थी या क्लासेस इस प्रकार की नहीं सुनी होती थी तो दादी जी दादी जानकी के बारे में खास इसका मैं नहीं समझती, आई डोंट नो कि इतना परिचित होता था। तो इसलिए सब चाहते थे कि हम अनुभव दादी का सुनाए, लेकिन इससे भी हर चीज से पार करना पड़ता है, और यही मैं कहूंगी कि जितना हम जिससे दादी चाहती थी वैसे हम करें, और जो दादी कहती थी कि दादी पहले भी कहती थी कि इस रीति से पालना आपको देनी है, तो वही बुद्धि में रख के ध्यान पर रख के यही अभी हम करेंगे जितना हो सके, हर एक भाई बहनों के ऐसे प्यार और स्नेह से देंगे।
Oh,
शांति 1986 से लेके 2020 तक 34 साल के अनुभव हंसा बहन के अंदर भरे पड़े हैं। कल बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही थी दादी, कैसे केला खा करके और पैदल बंबई की गलियों में ज्ञान देती घूमती थी, अपने भोजन पे खर्चा नहीं। 12 साल तक दादी ने कोई नया कपड़ा नहीं पहना। तो मैंने कहा वो सब बातें आप सुनाना ना, आजकल तो हम भाई बहनों को उनकी बहुत जरूरत है। तो अगला सवाल उसी प्रकार से सुनाएंगी, अगला उत्तर अभी हमारे आदरणीय भ्राता जी दादी प्रकाश मणि जी का चित्र हमारे सामने खींचेंगी।
परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का साथ का अनुभव 1969 से लेकर के 2007 तक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और बाबा बोलते हैं संकल्प से सिद्धि, ब्राह्मणों को इस विधि में आगे बढ़ करके एक एक संकल्प का सिद्धि स्वरूप आत्मा बनना। परंतु उसका क्लासिकल एग्जाम्पल कहो, बड़ी एग्जाम्पल कहो, मैं दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में देखा। उसका जो भी संकल्प आता वो सिद्धि होता था। किसी को भी संकल्प में उसको दादी दृष्टि देते हैं, वह वरदान देते हैं शब्दों द्वारा, वो प्रैक्टिकल होता। ऐसा मैंने जिंदगी में बहुत लोगों से मिला हूँ, संतों से मिला हूँ, साधुओं से मिला हूँ, नेताओं से मिला हूँ, बहुत मैंने देखा। परंतु दादी का जो संकल्प आया मना वो सिद्धि स्वरूप है। क्यों? उसके अंदर इतनी एक पवित्रता की शक्ति थी, क्लैरिटी थी, और बाबा के साथ अटूट निश्चय था, और जो भी करना है दृढ़ संकल्प करना, अब करना, कल के लिए नहीं। ये बातें जो हम सुनते मुरली में अन्य लोगों से, उनकी जीवन में प्रैक्टिकल मैंने देखा। मैं पहले बार बता रहा था इससे पूर्व में, मैं 68 में भी सितंबर मास में इधर आकर के वापस में चले गए, और जनवरी में बाबा ने 21 तारीख 18 जनवरी उस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा। उस दिन अचानक हम सेंटर में जाकर के योग के लिए, उसी दिन योग रखा था, हॉलिडे था, हम सभी बैठे हुए थे, तब एक फोन आया, मधुबन तो हृदय पुष्पा दादी ऐसे बैठी थी इस गद्दी, उनके लिए फोन था, उन्होंने जाकर के फोन अटेंड किया। अटेंड करने के बाद में थोड़े मिनट के अंदर वो बेहोश हो गए दादी, हृदय पुष्पा दादी। क्यों हुए हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा। उधर ऐसे ऐसे फोन अटेंड करते बाबा अव्यक्त हुआ था, उसका संदेश सुन करके दादी ने बेहोश हो गए। बाद में उसको उठा कर एक कमरे में लेके गया, पानी छिट गया, कुछ समय के बाद में उसको होश आया, तब उन्होंने बताया समाचार मिला अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिया। हम सबको ये शॉकिंग था उस टाइम, बाबा अभी बाबा चले गए, तुम कैसे चले गए, संस्था कैसे चले गए। बाबा ने कहा हम आप सबको साथ लेके चलेंगे। साथ का भावना उस समय में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग तो लिमिटेड था, उसके अनुसार बाबा साथ की बजाय पहले ही चले गए, और ये संस्था कैसे चलेगा और ये क्या होगा, और हम बाबा से मिल नहीं सकेंगे, शिव बाबा से भी नहीं मिल सकते क्योंकि शिव बाबा का रथ है। और अभी बहुत क्वेश्चन ऐसा उठता था। और बाद में उसी दिन जो आप अव्यक्त होता, वापस कुछ लोग माउंट आबू आने के लिए प्लान किया, मैं नहीं आ सका क्योंकि मुझे मार्च में एग्जामिनेशन था, अभी सितंबर में होके आया हूँ, और हमारा परिवार के भाई बहनों को किसी को भी बोल के नहीं गया था, मैं तो एक्सकर्शन के बोल करके आया था, अभी दोबारा कैसे जाएं। परंतु लोग जो मरियापा भाई, बसवराज भाई, दादी और सभी शाम का एक ट्रेन में निकले, क्योंकि फ्लाइट उस समय में इतना नहीं था, अहमदाबाद तक का फ्लाइट, आप बॉम्बे जाओ, बॉम्बे से अहमदाबाद आओ, और छह सात भाई लोग, हमारा दादी हृदय को श्रद्धा दिया है, उसके बाद की हिस्ट्री अलग है, और बाबा ने दादी को निमित्त बनाया था उस समय, दादी प्रकाशमणि जी को, और सारा कारोबार दादी प्रकाशमणि का हाथ में आ गया, बागडोर बाबा का, उसका भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। उसके बाद में मैं 69 में भट्टी रखा था, कुमारों की भट्टी, काफी अच्छे अच्छे लोग थे कुमार, तो उस भट्टी में आया, भट्टी में आने के बाद में वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ, चेंज हुआ हमारा जीवन में भी, बहुत परिवर्तन आया, और ये तो एक शुरुआत की। उसके बाद में मैं दादी प्रकाशमणि जी का परिचय कहो, कांटेक्ट कहो, एक अनुभव करो, उसके साथ मीटिंग करना हो, मिलना आदि आदि बातें हैं, और बाबा के साथ, अव्यक्त बाबा के साथ, और दादी, बाद में अनेक दादियों से मिले, गुलजार दादी से, रतन मोहिनी दादी से, और जानकी दादी से, इस सभी, परंतु जानकी दादी का इतना मेरा डीप एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते, पूना में रहते थे, हमारा हृदय पुष्प दादी बार बार पूना जाती थी, क्योंकि उनकी बहन थी, बड़ी बहन बॉम्बे में, और एक बहन थे और चंद्रमणि दादी, सभी उधर जाते थे, मैं एक दो बार गया था उस टाइम, दादी से भी मिला था, परंतु मेरा इतना अच्छा उस टाइम डीप अनुभव नहीं था दादी से, क्योंकि वो कोना में थी दादी का सेंटर वगैरह, और उसके बाद में उनके साथ बहुत विदेश में जाकर के वापस आई दादी, जाने से पहले एक बार कर्नाटक में आई थी दादी, मैं हुबली में एक म्यूजियम एग्जीबिशन किया था उसका इनॉग्रेशन में, उस समय में उससे मिला था दादी, जानकी दादी से, और प्रकाशमणि दादी से बहुत बार मिलने का सुअवसर मिला, उसके साथ मैं बहुत यात्रा किया हूँ, कार में यात्रा किया हूँ, बस में यात्रा किया हूँ, फ्लाइन में यात्रा किया हूँ, चार्टर्ड फ्लाइट में, हेलीकॉप्टर में यात्रा किया हूँ, और साथ साथ में ऐसी दादी के साथ मेरा बहुत स्थानों पर जाना हुआ, और उसके साथ उसी कारण से दादी को मैं अनुभव में बहुत अच्छे अनुभव कहो, एक सिद्धि पुरुष के साथ, एक सिद्धि स्वरूप आत्मा के साथ और रहने का कुछ तो समय अनुभव हुआ। और उसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब दादी को जयपुर में चन्ना रेड्डी जी ने दादी को बुलाया था, उस समय में दादी को इधर से कोई प्लेन तो नहीं है और कार में जाना 10 घंटा, आजकल तो रोड तो अच्छा है, 5-6 घंटे में पहुंच सकते है, उन दिनों में बहुत रात की ट्रेन, आजकल का जो है ना आश्रम एक्सप्रेस, हम लोग उसमें बुकिंग करके दूसरे दिन उधर जाना था, हम गए रात में, उसी दिन ट्रेन लेट हो गया, 11:30 बजे लगभग गया, हम बोर्डिंग किया ट्रेन में, फर्स्ट एसी में थे हम चार, होते दादी थे, मुन्नी बहन थी और मोहिनी बहन थे, मैं भी था, हम चारों सोने के लिए, हम दो ऊपर बर्थ होता है ना, ऊपर बर्थ में सो गए, दादी नीचे बर्थ में थी, 11:30 बजे लगभग दादी मुरली पढ़ती, मैंने बोला दादी आप तो बाबा से मधुबन में इतने बार मुरली पढ़ते, अभी तो 11:30 बज गए, आप सो जाओ ना दादी। दादी ने बोली नहीं, मैं सोने से पहले रोज 10 मिनट का मुरली पढ़ के मैं सारी दिन का दिनचर्या विमर्श करके बाबा को सुनाती हूँ, ऐसा सुना के सो जाती हूँ मैं, इसे ऐसा लगता है मैं बाबा की गोद में सोए, नॉट बिस्तरे पर सोए, ट्रेन में सोए, ऐसी नहीं, बाबा के गोद में हम सो गए व रेस्ट कर दिया, ऐसा मेरा अनुभव है, इसके लिए मैं मुरली पढ़ के सोई। ये तो सबसे बड़ी, मेरा कान खुल गया, क्यों खुला, देखो दादी साकार बाबा अव्यक्त बाबा का मुरली सुनाती है, और दूसरी टाइम में भी शाम को 5 बजे 4:30 बजे दादी यीशु दादी के ऑफिस को, दादी के ऑफिस को, विश्व किशोर दादा का, विश्व रतन दादा का भी ऑफिस है, वो क्योंकि ये सब भी उधर ही मिलते थे। उस समय भी जाता था दादी सदैव मुरली अपने हाथ में रख करके, चाय में तो चन्ने कब रखती थी, एक आओ करके दादी देती थी उस टाइम में। और उसके ये सारी अनुभव था मुझे, परंतु उस समय 11:30 बजे की बात सुन करके मेरे को अचानक, देखो हम कॉडली स्टूडेंट है, हम कितने बार मुरली पढ़ते हैं, कितने बार मंथन करते हैं, कितना हम सब डिवेट करते हैं, दादी को इतना जवाबदारी के बीच में भी, इतने कारोबार के बीच में भी दादी का मुरली अपना कंपेनियन। कहीं भी जाना होता है दादी पहले, चाहे मोहिनी बहन व मुन्नी बहन को, मेरे बैग में मुरली रखा, पैसा रखा, कोई नहीं पूछती थी दादी, मुरली रखा और ज्ञानामृत रखा। ज्ञानामृत दादी के अंदर बहुत अच्छा, उसका पढ़ने का आदत था, ज्ञानामृत रखा, याद दिलाती थी। और बाबा का कमरे में जाना, शांति स्तंभ में जाना कभी नहीं भूलती थी। मधुबन से बाहर जाना है तो सबसे ज्यादा बाबा से विदाई को हो, बाबा से कह करके जाना हो, तो पहले बाबा का कमरे में जाती थी दादी, और उसके बाद में शांति स्तंभ में आकर के 2 मिनट खड़े होकर के दादी आती। बाबा की प्रति और ब्राह्मणों की प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति एक समदृष्टि, क्षमा दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये तीनों को अनुभव मेरे जीवन में उसको देखते अनुभव होता, दैट वॉज एनकाउंटरिंग द स्पिरिचुअलिटी को, ऐसी मैंने दादी की। और अनेक बार दादी तो बेंगलुरु में भी बहुत बार आई, क्योंकि वो साउथ इंचार्ज भी थी, दीदी मनमोहिनी नॉर्थ का इंचार्ज थी और विशेष करके दिल्ली, और दादी बाबा अव्यक्त होने के बाद में अधिकांश सारी साउथ इंडिया की जितनी भी सर्विस हुए, दादी बीच बीच में 3 मास 4 मास 6 मास 1-2 बार मास में 3 बार आई थी दादी ने, उसके अलग प्रोग्राम आदि के कारण से। इसके लिए दादी के साथ मेरा बहुत बड़े अच्छा अनुभव है। और साथ साथ में मैं मधुबन में रहने का कारण दादी और निर्वर भाई, उससे पहले मैंने दिल्ली में 76 में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था लाल किला मैदान, रामलीला मैदान में, उस समय मैं कर्नाटक से गया था, 73 से जो जोनल मीटिंग होता था उस मीटिंग के लिए दादी हृदय को मुझे साथ में लेके आती थी, हम आते थे उस समय में, और उस समय भी बहुत कुछ इंटरेक्ट होता था दादी के साथ, और भी अन्य दादियों थे, दीदी मनमोहिनी। 1982 में मैं माउंट टोबी में रहने का शुरुआत किया, पहले आते जाते अलग बात में, और दादी उससे पूर्व में बहुत बार बेंगलोर में आए हैं, बहुत बार दादी से मिलते रहे। और एक बात, 83 के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का होना वाला था, होने के बाद में मैं दादी से मिला प्रकाशवाणी से, और उस समय पूछा दादी मैं बेंगलोर वापस जाऊं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट टाइम करीब 124 मीडिया के लोग आए थे, डॉक्टर रॉबर्ट मुल्लर आए, वस्ट्रस और भी बहुत लोग आए थे, महात्मा गवर्नर आदि। मेरे कारण माउंट आबू आकर के उस प्रोग्राम में भाग लेने का दादी और निर्वेजी था, क्योंकि मैं 5-6 मास उसके बाद में जाने के लिए पूछा, दादी वाला क्यों जाना चाहते हो, बाबा अच्छा नहीं लगता है, दादी अच्छा नहीं लगता है, मधुबन तेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्यों जाना चाहते है? इतने प्रश्न ये किया, मैं क्या जवाब, मैंने बोला दादी सब अच्छा लगता है, दादी अच्छा लगता है, बाबा से बार बार मिलने का मौका मिलता है, मधुबन तपोभूमि रहने का है, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता, कोल्ड, हम साउथ वालों को कोल्ड कभी ही, इतना एक्सपीरियंस, एक स्वेटर भी नहीं पहनते थे हम लोग, इधर आकर के बाद में स्वेटर पहनो, अंडरवेयर पहनो, कोट ओवर कोट पहनो, और सुबह सुबह उठ करके ऑफिस में, उन दिनों में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था, लेटर्स बनाओ ये सभी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस होने के बाद दादी ने मेरे को दृष्टि दिया, भाभी दादी कभी सोचती है ठंडी में बाहर जाऊं, मैंने दादी कभी ठंडी में बाहर जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए, अन्य स्थानों पर जाने के लिए नहीं सोचती, दादी तो इधर ही रहते हैं ना, मुझे तब मेरा ठंडी भाग गया, मैंने संकल्प किया रहना हो तो इधर ही, जीना भी इधर ही, मरना भी इधर ही, ऐसा अनुभव, क्योंकि उनका एक शब्द जो है मेरे दिमाग को चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, मधुबन निवासी बने। उससे पहले तो आते जाते रहते, अलग बात है। और बहुत 73 में 74 में बड़ा मेला किया था आफ्टर दिल्ली। दिल्ली में तो दिसंबर जनवरी हुआ था, उसके बाद में बॉम्बे हुआ था, बॉम्बे के बाद में हम लोग बेंगलोर में किया। दादी कम से कम उस समय 3 बार बेंगलोर में आई, एक तो मेले क्या उमंग उत्साह भरने के लिए, उतना इतना सेंटर्स नहीं था उधर और इतने लोग नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने संकल्प किया था बड़ा मेला होना चाहिए। और उस समय दादी मीटिंग के लिए आया, उस समय इनॉग्रेशन में आई, बाद में समापन में भी आई। दादी के साथ सभी दादियों को भेजे, बहुत सभी दादियों को, इसलिए उधर भी बहुत अच्छा मिलन। और बाद में बहुत है, मैं मैसूर में दादी के साथ हेलीकॉप्टर में गया हूँ, और तिरुपति है दादी के साथ हेलीकॉप्टर में गया हूँ, और आंध्रा में 2-3 जगह में हेलीकॉप्टर में गया हूँ, और काफी दादी के साथ हेलीकॉप्टर में मैं जाने को, चार्टर फ्लाइट, छोटे फ्लाइट में, और भी बड़े फ्लाइट में तो अनेक बार जर्नी किया हूँ ऐसा दादी के साथ। मुझे दादी के साथ रहना, दादी की देखने से ही खुशी हो जाता है, और दादी ने बहुत ठोली खिलाया मुझे, बहुत बातें सुनाई, और उसके कारण आज हम लोग जिंदा है, वह कुछ बने हैं, वह कुछ बनने का लक्ष्य है, उसका सारा मैंने दादी की जीवन से, उनकी बातों से, उनकी मुरली से। मैं कभी कभी मुरली मिस कर देता था, मैं पांडवन में रहने शुरू करने के बाद में अधिकांश फर्स्ट लाइन में बैठता था, परंतु मैं जिस दिन क्लास में नहीं है तो दादी देख करके सबको दृष्टि देती थी। आज मृत्युंजय नहीं बैठा, कहाँ है मृत्युंजय, ऐसे क्लास में बोल देती थी, मैं डर के भाग के जाता था। अभी कहाँ थे, अभी तक आप क्लास में नहीं है, आज तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, सभी मैं डर डर के बैठ जाता था, परंतु उससे क्या बोलते हैं उसका एक अपनत्व का अनुभव किया और खुशी का अनुभव किया। दादी क्लास में याद किया, उसका अनुभव किया, अच्छी ताकत मिली, और उसके बाद में मेरा बहुत अधिकांश रेगुलरिटी हो गया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के दिनों में कोई ना कोई फोन आता है, कोई ना कोई अर्जेंट लिख करके भेजना होता है, वो सारी बातें दादी को बताने, दादी हम बिजी थे ऑफिस में कार्य में, हमारा ऑफिस ओम शांति भवन का नीचे है, उधर ही रोज दादी क्लास में जाने से पहले उधर आती थी, हम सबको दृष्टि देती थी, बहुत समाचार सुना पूछती थी। इस तरीके से दादी से हमारा बहुत कांटेक्ट करो, बहुत संबंध कहो, एक रूहानी डिवाइन मदर कहो, होली मदर कहो, स्पिरिचुअल मदर कहो, किन शब्दों में कहे दादी का अनुभव मेरे को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने साथ हम सबको भी चार्टर्ड फ्लाइट की यात्रा करवा दी, देश विदेश की यात्रा करवा दी। अभी हमारी हंसा बहन, दादी जी ने सेवा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं फेस की और उनका समाधान कैसे हुआ? पूना में थे तो दादी को इतनी समस्याएं आई, पर दादी एकदम बहादुर बन करके खड़ी रही, तो वो आपको सुनाएंगी, बहुत अच्छे अनुभव।
वैसे तो शुरू से जब से बाबा ने दादियों को बाहर भेजा सेवा पर, तो कठिनाई तो सब दादियों में आई, लेकिन ज्यादा करके हमने दादी जानकी का ही सुना है, तो कैसे कैसे परिस्थितियों में भी दादियों ने सेवा किया है। जैसे कि अमृतसर में जब वो वहाँ भेजा गया तो कोई सेंटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक छोटी सी जगह किसने दिया था, तो वहाँ खुद को गोबर का पोथा लगा के वहाँ बैठ जाती थी क्लास कराने। तो फिर इसी रीति से लोग जो सुनने आते थे तो बहुत ही उनको अच्छा लगता था, तो लेकिन इसी रीति से भी सेवा करते भी उनको ये नहीं ख्याल हुआ कि ये कोई यहाँ कोई साधन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सेवा करें। लेकिन ज्ञान की लगन, तो बाबा ने भी इनको इतना फोर्स भर के भेजा था सेवा पर, तो वो लक्ष्य लेके इसी रीति से दादी ने सेवा किया। और जब पुणे में थी तो दादी को तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। वहाँ भी कोई सेंटर नहीं था और एक स्थान पर तो ऐसा था कि किसी ने अपना स्थान दिया था तो बाजू वालों को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे इस रीति से ये यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत बहुत परेशानियाँ करते रहे। जैसे कभी कुत्ते को खड़े करते थे तो ताकि वो भो भो करके जिज्ञासु कोई सेंटर पर नहीं आवे, और खिड़की खुली रखते थे तो जैसे मांस खिड़की से फेंकना। तो एक बार दादी ने कहा कि एक बार तो जो बकरी का सिर है ना वो उसके खटिया पर फेंका। लेकिन देखो ऐसी परिस्थितियों में भी जैसे दादियों को बहुत नशा रहता था, अपनी गोद तो नशा चढ़े, तो ये सब फेस करने के सिवा भी उनको कोई वो नहीं हुआ, हलचल नहीं हुई कि यहाँ से हम चले जाए, उनको संकल्प नहीं आया। लेकिन जिन्होंने ये मकान दिया था लैंडलॉर्ड वालों ने, तो बाजू वालों ने उनको बहुत कंप्लेन किया, इन्हों को यहाँ से निकालो कैसे भी करके निकालो। तो एक बार ऐसे हुआ कि सारा फर्नीचर बाहर निकाल दिया था, उनकी चीजें। तो फिर देखो कोई समय पर मदद करता है तो कि कैसे दादी लास्ट तक उनका चुप्तु करती है। और जयंती बहन के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने जब देखा कि बाहर सारा सामान फेंक दिया इन्होंने, तो कैसे वो कैसे भी करके कहां से भी ढूंढ के एक स्थान इन्हों को दिलवाया, और कैसे दादी ने लास्ट तक उस परिवार को संभाला, उसका सारा जैसे चुप तो करते हैं ना ऋण मुक्त। हाँ, तो इस रीति ऐसे दादी ने चुप तो किया। क्योंकि जब मुरली दादा और जयंती बहन की मदर जो थी रजनी बहन, उनको लास्ट तक जब तक जिंदा थे तब तक बहुत प्यार से ग्लोबल हाउस में रखा, उनको संभाला। और आप सभी को पता है कि जयंती बहन का भी बहुत क्लोज कनेक्शन था दादी के साथ भी। तो मतलब कि कोई भी सेवा में परिस्थितियां आई है, आई तो बहुत, कोई समय ऐसा भी था कि बाहर जैसे सड़क पर सोना होता था और ईंट के तकिया लगा के भी दादी सोई है। ऐसी परिस्थितियां को इसको कोई जैसे सेवा करने का बंद नहीं किया, और ही नशे से सेवा करते थे। क्योंकि ज्ञान का भी फोर्स था, योग का भी फोर्स था, तो ऐसे परिस्थितियां दादियों ने फेस किया। और हम जब दादी का कहानियां सुनते थे तो हम तो कहते थे दादी हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फेल हो जाते इस बातों में। तो दादी ऐसे हिम्मत कर दिलाती थी कि कुछ भी हो जाए आगे से ही अपना स्थिति है उसको मजबूत रखना है, तो कोई भी परिस्थिति आती है तो वो आप फेस कर सकते हैं। तो अभी भी वो समय है जो हमको अपने योग बल भरना है, क्योंकि समस्या तो बहुत आएंगी, ऐसे नहीं कि लॉकडाउन में इतना ही है, लेकिन आगे चल के क्या होगा हमको क्या पता। तो उसको फेस करने के लिए अभी भी हम जैसे दादियों ने अपने ज्ञान का फोर्स भरा, बल भरा, तो इस रीति से हम बाबा जो अभी समय दिया है उस समय का वैल्यू रख के अपने को स्ट्रांग बनाना है।
भाई बहनों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे तो और बहुत माल निकलेगा अंदर से, दोनों भंडार हैं। आप
उधर ही खड़े हो, कैसे
ओम शांति। खास करके दादी जानकी के बारे में जानने का ये इंटरेस्ट था, क्योंकि दादी जानकी इस एज तक आए और उस दौरान दादी काफी कुछ भूलते भी थे उस एज में, लेकिन कई बार क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप डूंगरपुर आए तो हमने देखा भी है जब आप दो दिन के लिए आए कि दादी की प्रोग्राम से पहले स्थिति कुछ और है। दीदी बड़े प्यार से समझा रही हैं और स्टेज पे पहुंचती है दादी तो वो कुछ और ही रूप होता है। तो ऐसे अनेक अनुभव हुए होंगे आपके, तो ऐसे कितनी बार मतलब ऐसे कई वीआईपीओ से मिलने से पहले भी आपने किस तरह से दादी को वहां से संभाला, तैयार किया और वहां जाके दादी कुछ और ही शक्ति के रूप में मिलती है, तो ऐसे कई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें।
ऐसे तो बहुत है, 100 अनुभव है। जब भी हम भारत में ट्रैवलिंग करते थे तो ओम शांति सुनाई पड़ता ना, तो ऐसे भारत में बहुत ट्रैवलिंग किया है। एक एग्जांपल देती हूँ कि हमको 7 बजे फ्लाइट, यहाँ छोटी फ्लाइट आने वाली थी और बड़ा रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में जो हमको पहुंचना था। तो सारी रात दादी सोई ही नहीं, दादी काफी बीमार थी। तो फिर 4 बजे हमने फोन कर दिया कि ब्रिज मोहन भाई को कि दादी नहीं आएंगी। तो वो तो बहुत काम रहे, बहुत काम थे, हलचल में नहीं आए। तो अच्छा ठीक हो जाएंगी, ऐसे बोला ठीक हो जाएंगी। और फिर हमने फ्लाइट वालों को भी बोल दिया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हम फिर भी उनको कुछ नहीं बोला, इतना ही कि दादी नहीं आएंगी। और यहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम किसी रीति से उसको ठीक करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत दादी का जो जहाँ भी जाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, तो वो भी हम देखते थे कि मेहनत तो बहुत करते हैं और प्रोग्राम भी बढ़िया से बढ़िया रखते थे। और फिर हमने एक जैसे इंजेक्शन कुछ दे देते हैं, दवाई कुछ दे देते हैं, लेकिन कान में डाल देते थे उनके, जैसे नहीं कोई मंत्र डाल देता है। दादी बहुत बड़ा प्रोग्राम है दिल्ली में, अभी आपको जाना है, इतना ही। तो आप सोच सकते हैं कि दादी का योग बल कितना काम करता है। हम इतना ही बोल देते हैं कि यहाँ आपको जाना है। तो जैसे कर्नाटक में भी जनवरी में दादी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन कान में डाल दिया कि ये प्रोग्राम है। फिर दादी अपनी रीति से जैसे योग बल से अपने आप को भी तैयार करती थी, वो भी काम करता था, जो दवाइयाँ देनी थी वो भी काम करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सबके जो जिस स्थान पर जाना है वो सब योग करते थे, वो भी तो काम करता है। वो भी छोटी मोटी बात नहीं है कि परिवार का जो जो पुल है, जो खींच है, तो सब रीति से देखा जाए तो उसमें मदद करता था। फिर जैसे दादी को बोल दिया और 9 बजे तो ऐसे लगता था कि कुछ है ही नहीं, तो फिर हम फ्लाइट बुला के फिर हमने बोला चलो दोपहर तक वहां पहुंच गए। तो हम वैसे किसी को बोलने जाए कि दादी ठीक ही नहीं है, कई बार ऐसे होता है, लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसे ही लाना नहीं है या आना नहीं है तो मिलाना नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता था, यहाँ कितनी पार्टियां आती थी तो हम कहते थे, एक मिनट कहते थे दादी बिल्कुल ठीक नहीं है, दादी खटिया में है, और फिर आप 7 बजे देखो तो स्टेज में है। और स्टेज में भी जाती है तो भी वो इतना आवाज से ओम शांति जो बोलते, कोई कह भी नहीं सकता है कि 2 घंटा दादी की तबीयत ऐसे बिगड़ी थी। लेकिन दादी के अंदर की जो विल पावर है और बाबा की भी पूरी पूरी मदद है, वो उनको खड़ा कर देता था। बहुत ऐसे अनुभव है, हमारे टूर का तो बहुत टू मच अनुभव है। वहां भी कर्नाटक में भी हम गए लेकिन किसी को पता नहीं चला कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको यहाँ तक भी पता नहीं होने दिया कि कोई सेलाइन हमने चढ़ाया है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम तो वही हो हुआ जो 25,000 लोग और रामदेव बाबा भी आया था, सीएम भी आया, वो दादी ने कितना अच्छा बोला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था अपने शरीर को, अपने तो प्रैक्टिकल देखा है। तो कुछ भी होता था दादी को, लेकिन हम ज्यादा फैलाते नहीं थे, क्योंकि फिर कहीं के नेगेटिव भी उसमें संकल्प आ जाते कि ऐसे बीमार है और लेके जा रही है, ऐसे भी हुआ है। कई समय दादी बहुत बीमार थी और हमारे लंदन का कैंसिल करना पड़ा, और फिर देखो एक सप्ताह के बाद दादी लंदन जा रही है। अगर हम बोल देते थे कि दादी ठीक नहीं, वो देखते भी थे तो कहते थे इसको क्या हुआ है, इतना क्या लगा पड़ा कि ये लेके जा रही है, ऐसे भी हुआ है। लोगों के बहुत नेगेटिव जो फोर्स थे, बोल थे, वो भी बहुत सुने हैं हमने, लेकिन हमको मालूम है कि एक दादी की दवाई है, ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएंगी, और खड़ी हो ही जाती थी दादी का, दादी की भी हिम्मत तो थी, और दादी को भी इस प्रकार की सेवा कराने से और आयु बढ़ती, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग्स भी तो मिलती है।
ये बात सच है, विशेष हमारा दादियां, उसमें नंबर वन जानकी दादी, उसको अपने आप में अपने शरीर से अलग होना और अपनी स्वमान में आत्मा की स्थिति में स्थित होना और समय पर रेडी हो जाना, और तीसरा मेमोरी, लास्ट तक सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा दादी के अंदर मेमोरी था, भले लेटेस्ट की मेमोरी कम था, पूर्व की सारी मेमोरी जैसे रिकॉर्ड प्रिंट हो गया उधर, ऐसा बहुत अच्छा है उसकी इवेंट्स ऐसे सुने। मैं एक 83 में फर्स्ट यूनिवर्सल पीस का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस टाइम में दादी बहुत समय 4 साल के बाद में लगभग माउंटोबो वापस आई थी, और उस टाइम में भी दादी को हाथ पकड़ करके हॉल में ले जाना कॉन्फ्रेंस है। तीसरी जो बात उसके अंदर, जब तक मुरली नहीं पढ़ेंगे तब तक नाश्ता भी नहीं करती थी, पहले मुरली और उसके बाद में नाश्ता, बाबा के प्रति उनके अंदर एक बहुत निश्चय, उसके अनुसार मैंने देखा बाबा उसको समय पर पूरा मदद करते। अब ब्राह्मणों के प्रति इतने विश्वास, ब्राह्मणों से खुद उनको उत्साह भरना और ब्राह्मणों से अच्छा वाइब्रेशन कराना, इसमें तो नंबर वन दादी जानकी दादी, दादी प्रकाशमणि जी तो है, और दादी प्रकाशमणि अव्यक्त होने के बाद में दादी 2007 से लेकर के अभी तक इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हो गए, अभी लाखों की संख्या में प्रोग्राम हुआ, ऐसे बहुत बड़े
सब दादी एक बात के लिए
अंसाबेन को बहुत बहुत दुआ देते हैं खुशी, क्योंकि उन्होंने आधा घंटे पहले दादी ठीक नहीं है और आधा घंटे के बाद में जो तो स्टेज पर आ ही गए, और इतना उनके अंदर एक विश्वास, और इनको भी उनके प्रति विश्वास, एक विश्वास है दादी रेडी हो जाएंगे, आधा घंटे में रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ऐसा करके एक हिम्मत दिलाना, हिम्मत बच्चे मदद दे बाप जो बाबा कहते ना, उसका एक एक दिन की एक एक अलग अलग अनुभव होता था, ये सच्चाई है। और आप दूसरे सभी दादियों को आप जानते ही है, बड़ी हमारा एक डिवाइन फोर्स करो, पावर कहो, एक मिशन कहो, उसका पूरा करने में उन्होंने जितना भी योगदान दिया है उसकी फाउंडेशन में हम सभी है, इसके लिए ये हम सबको भी ब्राह्मणों को बाबा का ऋण भी चुप्त करना, दादियों का ऋण भी चुप्त करना, माना ऋण भी शब्द पता नहीं पूरा भक्ति मार्ग का शब्द है, परंतु उस उन फुटप्रिंट्स के आधार से हमको आगे बढ़ना, इकोनॉमी, इकोनॉमी का अवतार है, बहुत सभी दादियों में विशेष करके इकोनॉमी, आइए जानकी दादी तो फर्स्ट यज्ञ देन लंदन देन विश्व सेवा, इसके अंदर एक रुपया मिलो तो पहले 4 आना मधुबन में भेजो, आठ आना उधर सेवा करो लंदन में, और कोई भी सेंटर है उनका जो परिचित है, उनकी बात मालूम है, उसकी स्थिति मालूम है, उनको खास दादी मदद करने का संस्कार जो था ना सारे विश्व में, उसके कारण से उन्होंने विश्व में जा करके इतने बड़े, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, जो भी देशों में जो हुआ है, एक तो उनका एक दृढ़ विश्वास, बाबा का विश्वास, इकॉनमी का विश्वास और हिम्मत, हो जाएगा। कम बोलती थी परंतु विश्वास ज्यादा था, इसमें तो शक ही नहीं है सच्ची।
दादी जितना करती थी उतना आता था, और जैसे ग्लोबल हाउस बन रहा है, ये तो आंखों देखी बात है, ग्लोबल हाउस बन रहा है, हमारे पास एक पैनी नहीं है, तो 4 मिलियन कहाँ से आएगा। लेकिन फिर भी मधुबन में जो थोड़ा बहुत कुछ आता था वो भेज देती थी, और लंदन के लिए कहती थी कि हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। तो इस रीति से बाबा में इतना पूरा फेथ कि हो जाएगा, वो हो ही गया, बहुत सहज रीति से, कोई भी खींचातानी कुछ नहीं। और स्थानों पे भी दादी ने बहुत मदद किया है, एंडलेस मदद किया है। और जब शरीर की बात आती है, सेवा की बात आती है, दादी हमेशा ये कहती थी कि आत्मा अपना काम करे, शरीर अपना काम करे, मेरा क्या लेना देना है इसके साथ। तो इस रीति से अपने आप को चलाती थी वो, उसके चंबे में, शरीर के चंबे में नहीं आती थी वो, बहुत डिटैच रहती थी, वो अपना काम करे, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। तो बहुत विश्वास रहता था। और एक बात दादी हमेशा ये कहती थी कि शरीर का कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बुद्धि सालिम रहे। तो बाबा से यही हमेशा लास्ट तक कि मेरी बुद्धि सालिम रहे, शरीर को कुछ भी होए, तो यही दादी लास्ट तक बहुत अच्छी उनकी स्थिति, उनका जो माइंड सेट बहुत अच्छा था। तो इजीली शरीर को चुकतु भी किया, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मींस एकदम एंजल की तरह गई दादी।
हाई एंजल।
ओम शांति। बहुत नई नई जानकारियां, बहुत गहरी गहरी बातें हम सबको सुनने को मिली, ऐसा ही है ना, आप सबको मजा आया ना। और मन तो करता है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन घड़ी देख रही है तो इसलिए फिर कभी ऐसा मौका अवश्य बाबा देगा और बातें सुनने को मिलेंगी। तो हमारे भ्राता जी का और हमारी बहन जी का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा
समय। सर्वस्व समर्पण है। दैवी गुणों को दर्शाता दादियों का दिल तो दर्पण है। स्नेह प्यार में पालती अपने, स्नेह प्यार में पालती अपने, सुखों की दे कुर्बानियां। आज बने हैं जो भी हम तो इनकी मैं